अध्ययन बहनों भाइयों एवं बच्चों, आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय का पाठ करती हूँ। 9वां अध्याय से भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्य अम्यना सूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्। श्री भगवान बोले, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान से ज्ञान दृष्टि के लिए मैं तो फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मन संसार से मुक्त हो जाएगा। कर्म योग निष्काम भाव गोया है, ज्ञान योग आत्म ज्ञान वो है तर है, गुड बेटर बेस्ट, और भक्ति योग परम ज्ञान वो है तमम है। बोली, कर्म योग गुड है, ज्ञान योग बेटर है, और भक्ति योग बेस्ट है, भी बेस्ट है। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। समग्र सगुण ही हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। श्लोक 2, राज विद्या राजगोहम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धन्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। ये अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। ये धर्म में है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। विज्ञान सहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। ज्ञान में क्या कहते, वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान है, हर एक चीज में भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, इसको विज्ञान सहित ज्ञान कहते हैं। श्लोक नंबर 3, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म परंतप अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर नित्य रूप संसार के मार्ग में लौटते हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। मतलब किस पर श्रद्धा ने विज्ञान सहित, जो ज्ञान है उस पर जिनकी श्रद्धा नहीं होती उनको बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है, और वो अमृतक अमृत का मार्ग छोड़कर मृत्यु की ओर ही जाते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था, पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति ना हो सके। उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं कि मार्ग तो दिया भगवान ने, पर न जाने मनुष्य क्यों भटक जाता है, क्यों वो भगवत प्राप्ति की ओर नहीं चलता है। तो श्लोक नंबर 4, मेरा तक इदम सर्वम जगद अव्यक्त अमूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेज व्यवस्थिता। ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सर्वव्यापी, भगवान की एक संज्ञा है सर्वव्यापी, सर्वव्यापक। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सब प्राणी जो है वो मुझ में स्थित है, भगवान में, हम सब जितने भी हैं, कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी, परंतु भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं, तथा वे प्राणी भी मुझ में नहीं है। वैसे तो सब प्राणी मुझ में स्थित है, तो आगे कहते हैं ना चाह मत स्थानी भूतानी पश्चिमी योगम ऐशम भूत भिन्न न चाह भूत स्थो आत्मा भूत भावना। मेरे ईश्वर संबंधी योग समर्थ को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों का धारण भोजन पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। देख इस प्रकार की यही है, बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक समान सद घनचित घन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। उस अभिव्यक्त सत्ता में मैं तू ये तथा वो ये चार विभाग नहीं है। तो भगवान की सत्ता है, इसमें मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको ये समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। जब तक हम ये समझते हैं ना कि परमात्मा और संसार दो है, कई दफा लगता ना, मेरी शुरू में लगता था कि परमात्मा अलग है संसार अलग है, तब तक क्या होता है कि संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। परंतु जब दोनों का भाव ना हो, तब ना परमात्मा में संसार है ना संसार में परमात्मा है। जब एक ही एक है तो एक दूसरे में कैसे होगा, एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है, संसार है ही नहीं। लेकिन किसने बना दिया संसार, हम लोगों ने, जीव ने। कैसे बनता संसार, जब जीव कहता मैं, अहंता ममता मैं और मेरा, अहंता है मैं, ममता है मेरा और कामना इच्छाएं, तब परमात्मा में संसार है इस दृष्टि से, और संसार में परमात्मा है। जब हमारी ये ईगो अहंता ममता अटैचमेंट और कामनाएं वासनाएं मिट जाती है, वो अहंता ममता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है। अर्थात क्या है, परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेवा सर्वमिति। समझा गई होगी आप लोगों को। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वानी भूतानी मत्स्थानी तु पधार है। श्लोक 6। जैसे सब जगह बिछने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। वायु घर तो है ही नहीं, दुनिया है, मेरे घर के ऊपर तो है, आपके घर के ऊपर नहीं, वो सब जगह है। ऐसे ही सारे प्राणी भगवान कहते हैं कि मेरे में ही स्थित है। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है और आकाश में स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है। मतलब ये मानना कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान में परमात्मा नहीं, परमात्मा में भगवान नहीं, लेकिन सब कुछ भगवान ही है, ये कैसे हो सकता है। जब मनुष्य ये मान ले कि वासुदेवा सर्वमिति, की सब जगह भगवान ही भगवान है, भगवान में स्थित है, भगवान में लीन हो जाते हैं। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्ते प्रतिनियन्ति मामिकां कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विशेषमहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। क्या कहते हैं, कल्पों का क्षय कब होता है, महाप्रलय में। तो क्या होता है, सब प्राणी जो है भगवान की प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, कल्पों के आदि में महासर्ग के स्नेह मैं फिर उनकी द्वारा रचना करता हूँ। सब कुछ जल में हो जाता है, फिर पृथ्वी निकलती है, फिर पृथ्वी में वनस्पति आती है, वनस्पति के बाद धीरे धीरे फिर मनुष्य का जन्म होता है, पशु पक्षियों का जन्म होता है, इस तरह से सृष्टि बनती और बिगड़ती है। उपरोक्त श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, इसे भगवान श्लोक में बताते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। देखिए कि जब महाप्रलय आती है तो संपूर्ण प्राणी मतलब 84 लाख योनियां भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं, लेकिन साथ क्या ले जाते हैं, कर्मों के बीच अपने कर्मों को साथ ले जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान ने बहुत श्यामा प्रजा मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। बड़े रहस्य की बात है कि जब उसका पानी जीव मात्र प्रकृति में लीन हो जाता है तो फिर उसके बाद जब उनके कर्म परिपक्व हो जाते हैं, जैसे फल पक जाता है वैसे जो कर्म, तो फिर भगवान के मन में एक संकल्प उठता है कि मैं एक हूँ, बहुत बन जाऊं, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। ऐसा जब उनके मन में संकल्प आता है तो महाशय का आरंभ हो जाता है। महाशय के आदि में भगवान उस प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। नापने के बाद फिर प्राणी पैदा होते हैं और फिर उन्हें फल कर्मों का फल दिया जाता है। श्लोक नंबर 8, प्रकृति स्वाम अवस्तभ्या विस्जामी पुना पुना भूत ग्रामम इमं कृष्ण अवश्यम प्रत्ये दुषात। प्रकृति के वश में होने से स्वतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पना के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। मतलब कहते हैं कि एक बार नहीं होता है, कई बार महाप्रलय होती है, कई बार जीव महाप्रलय में लीन हो जाते हैं, फिर उनके कर्म जब कर्मों से ही लीन होते हैं, जब कर्म परिपक्व हो जाते हैं, फिर भगवान इच्छा करते हैं कि मैं एक से बहुत हो जाऊँ तो बहुत सभी प्राणी प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय लौकिक विलक्षण शक्ति है। प्रकृति क्या है, बट इज दिस नेचर, वो कहते हैं कि ये भगवान की एक ऐसी अलौकिक और विलक्षण शक्ति है जिसका वर्णन करना वर्णन नहीं हो सकता है, करना कठिन नहीं हो ही नहीं सकता है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। जब भगवान सृष्टि बनाते हैं तो इस प्रकृति को अपने साथ ले लेते हैं, कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन उत्पत्ति विनाश आदि अंत होता है वह सब प्रकृति में ही होता है। क्यों लेते हैं प्रकृति को, क्योंकि सृष्टि का अंत भी है आरम्भ भी है, तो प्रकृति का अंत हो जाएगा आरंभ हो जाएगा, पर भगवान का नाम तो होता है ना आरंभ, इसलिए भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे कि वाल्मीकि अध्यात्म रामायण में कहा गया था कि सीता जी कहते हैं करती तो मैं ही सब कुछ, लेकिन दिखाई देता है कि भगवान करे लीला, प्रकृति करती है, भगवान तो एक रूप में दिखाई देते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता प्राधीनता कमजोरी इस आदि में ये नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति सब कुछ करती है तो भगवान उसके आगे कमजोर है, प्राधीन है, असमर्थ है। भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य होने पर भी उनमें लिप्तता कर्तृत्व आदि नहीं होते हो, एक और विशेष अवतारी भगवान की चाहे वो प्रकृति का आधिपत्य है ना, भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य है, स्वामित्व है, मतलब पूर्ण अधिकार है, फिर भी भगवान उस प्रकृति में जो कुदरत हमको दिखाई दे रही है ना लिप्त होते हैं ना वो कुछ करते हैं। भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं तथा जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है। जो प्रकृति से जुड़ जाते हैं भगवान से नहीं, उनकी भगवान बार बार रचना करते हैं। श्लोक नंबर 9, न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन उदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, तुम पूर्ण सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनावश्यक और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। कहते हैं कि मैं भी रहता हूँ लेकिन भगवान कहते हैं मुझे कर्म नहीं बांधते। कर्माशक्ति फलाशक्ति कर्तृत्व अभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे जन्म लिया तो, लेकिन बंधना नहीं है। तो बंधते क्यों है, एक तो हमें कर्म में आसक्ति हो जाती है, दूसरा उसके फल में आसक्ति हो जाती है, तीसरा कि मैंने किया ये अभिमान आ जाता है। परंतु भगवान में ना तो कर्माशक्ति है ना फला सकती है, ना ही करने का अभिमान ही है, इसलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बंधते, मनुष्य बंध जाता है। श्लोक नंबर 10, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूर्यते सचराचरम हेतु नामेन कौन्तेय जगद्रूपी वर्तते। शक्ति मेरी अध्यक्षता में चराचर से संपूर्ण जगत की रचना करती है। भगवान तो अध्यक्ष बनते हैं और प्रकृति क्या करती है, संपूर्ण जगत को बनाती है, रचती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है, क्योंकि भगवान तो देखते हैं चुपचाप बैठ के और भगवान की प्रकृति जो है वो सब काम करती रहती है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर सहित संपूर्ण प्राणी की रचना करती है। ये भी गंभीर विषय है कि प्रकृति की अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो भगवान से सत्ता लेती है, स्फूर्ति लेती है, फिर जाकर के संसार के सभी प्राणियों की रचना करती है। तात्पर्य है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती है, भगवान में नहीं। व्यक्ति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे नदी में इधर से उधर हो जाए, पर भगवान नहीं बदलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी। गीता माँ।